الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ نجم کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے معروف قرآن کی جلد نمبر 8 سے، آیت نمبر 33-62 جو بالکل آخری آیات ہیں اس کی، ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے پچھلی کلاس میں مکمل کر لیا تھا. معروف و مسائل سے غالباً پڑھنا شروع کرنا تھا، میں نے بالکل ابتدا معرف و مسائل کے وہاں سے شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 216 بنتا ہے ساجس کے پاس جو جلد ہے اس کے حساب سے. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے معرف و مسائل میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افرائیت الذی تولا، تو تولا کے لفظی معنی ہوتے ہیں منہ پھیر لینے کے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرے. یہ جو منہ پھیرنے کا کانسیپٹ ہے، یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا نا، اور یہاں پر جو نظام بنایا ہے، تو اس نظام کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشنز کا نظام بنایا ہے. ڈائریکشنز، سمت، ٹھیک ہے؟ تو سمت جو ہوتی ہے، یعنی ڈائریکشن، کس طرف آپ فیس کر رہے ہیں، یہ انتہائی امپورٹنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز جو ہے وہ آپ کسی بھی جگہ نہیں پڑھ سکتے سمت میں، کہ آپ نے جہاں پہ دل چاہا آپ نے مصلی بچھایا، اور یعنی ایک مصلی بچھانے کا مطلب یہ کہ بس کوئی پاک چیز آپ نے زمین کے اوپر رکھی، کوئی چادر بچھائی کچھ، اور اس کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دی. نہیں کر سکتے ایسا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے جو ہے نا، جب سے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی سمت متعین کری کہ تم نے کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد وہ سمت جو ہے وہ آگے جا کر کے جب بنی اسرائیل کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام، ہاں، وہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا وہ بیت المقدس کو بنا دیا. لیکن اس وقت بھی ایک قبلہ تھا، ایک سمت تھی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ سمت جو ہے وہ واپس نبی علیہ السلام کے زمانے میں پلٹ کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر بنا دی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بلا سمت والا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، ایک ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے نا، یہ تو ہو گئی فزیکل ڈائریکشن، ہے نا، مٹیریل فزیکل ڈائریکشن کی، جی کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور ایک ہوتی ہے اسپریچول ڈائریکشن، روحانی سمت. تو روحانی سمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ روحانی سمت کے لیے لفظ وہی وجہ کا استعمال کیا جاتا ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، ہے نا، چہرے کو وجہ کہتے ہیں. اور ہم روحانی سمت کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اردو زبان میں، یا ایون عربی زبان کے اندر، روحانی سمت کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ وجہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وجہ سے ہی ڈرائیوڈ ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں روحانی سمت، روحانی ڈائریکشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ بتائیں گے نہیں تو پھر پے اٹینشن کیسے کریں گے پھر اس طرف، ہے نا، وہ مذاق میں یاجس کہتا ہے نا، میری ساس مرحومہ کہا کرتی تھی، کیونکہ انگریزی آتی تو نہیں تھی، لیکن انگریزی کیونکہ انگریزوں کے ملک میں رہتی تھیں اور انگریزی بولنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اب اردو اور انگریزی کو مکس کر کے جب بولیں گے تو ایسی انگریزی نکلے گی، پے اٹینشن نہیں کرتے ہو تم، ہے نا. تو کیا ہے وہ لفظ، इसका ताल्लुक पे अटेंशन के साथ है। जी, चेहरा, वज, पे अटेंशन, तो क्या लफ्ज बनता है? रुख? नहीं, रुजू। अब इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा लफ्ज काफी है जवाब देने के लिए। पे अटेंशन कभी से भी बात समझ में नहीं आई? पे अटेंशन को उर्दू में क्या कहते हैं? कभी आपने अपने बच्चों से नहीं कहा पे अटेंशन किया करो, या उर्दू में नहीं कहा? एग्जैक्टली, तवज्जो, राइट। इसमें क्या मुश्किल थी? तवज्जो। तवज्जो किससे निकला? वज से निकला, वज। और वज का मतलब क्या होता है? चेहरा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रूहानी तवज्जो की। तो तवज्जो देना, अपने चेहरे को, रूहानी चेहरे को किसी तरफ कर लेना, अपनी फिक्रों को किसी तरफ कर लेना, अपनी सोचों को किसी तरफ कर लेना, ठीक है ना। और जो जो अजमत होती है किसी की, तो अपने दिमाग के अंदर जिसकी अजमत है उस अजमत को किसी की तरफ करना, इसको कहते हैं तवज्जो। और ये तवज्जो जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तवज्जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो फिर आपको किसी चीज से कोई फायदा नहीं होगा। आप बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ लें, तवज्जो के बगैर पढ़ेंगे, कहते हैं ना हमारे यहाँ, सर पे से गुजर गई, है ना। क्यों? इसलिए कि तवज्जो नहीं थी। उसी तरीके से आप लेक्चर सुन लें, दुनिया के सबसे बड़े आलिम का लेक्चर सुन लें, दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर का लेक्चर सुन लें, लेकिन तवज्जो नहीं होगी तो क्या कहते हैं उसको? एक कान से अंदर, दूसरे कान से बाहर, क्योंकि तवज्जो नहीं थी। तो आपको बड़े से बड़ा इल्म जो है वो फायदा नहीं पहुंचा सकता तवज्जो के ना होने की वजह से। तो तवज्जो कोई मामूली चीज हुई? तवज्जो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई ना। उसी तरीके से अल्लाह के नबी आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने आकर के जो है वो जन्नत के बारे में बताया, जहन्नुम के बारे में बताया, कुरान पढ़ के सुनाया, लेकिन सामने जो बैठे हुए साहब हैं वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो भाई अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब से उसको फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। क्यों? इसलिए कि ये तवज्जो नहीं दे रहा, ये तवज्जो नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो जब अल्लाह के नबी से फायदा नहीं हो सकता बेतवज्जो इंसान को, तो फिर छोटे मोटे आलिम, छोटे मोटे टीचर से कहाँ से फायदा हो सकेगा, ठीक है ना। तो बात समझने की कोशिश करें कि आज इस खामखा में इतना टाइम ही लगा रहा है इस वर्ड के ऊपर इतना टाइम आपके साथ इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो 1 घंटे की आप तफसीर क्लास सुन लें, अगर तवज्जो नहीं होगी कहीं और तवज्जो होगी। इधर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चल रहे हैं, उधर जो है वो किसी और से बातें चल रही हैं। जैसे कि कभी अल्लाह ताला की तरफ से क्या होता है कि किसी का माइक अनम्यूट हो जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसका माइक अनम्यूट हो गया, और पीछे से जो है ना वो ये आवाज़ें आ रही होती हैं हर किस्म की, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला एक्सपोज कर देते हैं ना, है ना, कि जी क्या चल रहा था तफसीर क्लास, तो वो ऑन करके जो है फिर उसके बाद सारे के सारे तमाशे चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई कर रहा है अगर, तो वो कुरान की नाकदरी कर रहा है, नाशुक्री कर रहा है इस मौके की, और इसके ऊपर फिर सजा तो मिलती है। तो क्यों सजा के लिए हम अपने आप को पेश करें भाई, ठीक है। तो तवज्जो इज दैट इम्पोर्टेंट। उसी तरीके से जब इंसान जो है वो तवज्जो नहीं देता किसी तरफ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीठ फेरना। यानी आपने चेहरा तो हटा लिया उसकी तरफ से, अब बेशक फिजिकल चेहरा आपने ना हटाया हो, लेकिन अगर आपने अपनी तवज्जो हटा ली, यानी स्पिरिचुअल अटेंशन, स्पिरिचुअल चेहरा आपने वहां से हटा लिया, तो इसी को कहते हैं पीठ फेरना, मुंह फेरना, राइट। तो तवल्ला, तवल्ला का मतलब यही है कि अपनी रूहानी तवज्जो को हटा लेना, ठीक है। तो जो रूहानी तवज्जो को हटा लेता है ना, तो फिर उसके लिए बहुत बुरे फैसले हो जाते हैं, हत्ता के अल्लाह ताला अपने रहमतुल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए पैगंबर हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है वो उनकी तरफ से तवज्जो को हटा दें, आप भी अपनी तवज्जो। फआरिद अम्मन तवल्ला, पीछे हमने ये भी तो आयत पढ़ी थी ना, कौन सी वाली आयत थी वो? आयत नंबर 29 है, उसमें अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं फआरिद अम मन तवल्ला, जिसने अपनी रूहानी तवज्जो आपसे हटा ली आप उससे भी एराज करें। ठीक है, तो फिर उस बंदे के साथ क्या होगा, क्या उसका बनेगा जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उससे एराज कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ना हमें भी बहुत फिक्र करनी चाहिए कि अगर हमारे मशायख और हमारे जो असातज़ा कराम हैं वो अगर हमसे एराज करना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हमारा मामला बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसी वजह से हुआ क्योंकि वी वर नॉट पेइंग अटेंशन, हम तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो वो जो हमारी तरफ से एराज करते हैं ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग होते हैं, वो एराज अगर कभी किसी से करते हैं ना तो वो ऐसे ही नहीं करते, खामखा नहीं करते, बल्कि वो इस वजह से करते हैं क्योंकि आप खुद एराज कर रहे थे उनसे, आप खुद जो है ना वो आपने अपनी पीठ फेर ली थी, तो फिर सुन्नत पर अमल करते हुए वो भी फिर एराज करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। ठीक है, तो अफराइत अल्लज़ी तवल्ला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने ऐसे शख्स को देखा कि जिसने अपनी तवज्जो आपसे फेर ली है। ठीक है ना, अअता क़लीलन व अकदा। अच्छा, एक चीज और रह गई कि जिस तरह से तवज्जो फेर लेना सबसे ज्यादा बुरी चीज होती है, उसी तरीके से जो फिरी हुई तवज्जो होती है, यानी पहले से फिरी हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से पलटी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम सलाम की तरफ से पलटी हुई है या दीन की तरफ से पलटी हुई है, उसको वापस पलट करके अल्लाह की तरफ कर लेना, अल्लाह के नबी की तरफ कर लेना, अल्लाह के दीन की तरफ कर लेना, ये सबसे बड़ी चीज होती है ना। जिस तरह पीठ फेर लेने से इंसान के लिए बुराई के फैसले हो जाते हैं, उसी तरीके से पीठ वापस यानी चेहरा वापस अल्लाह की तरफ कर लेने से खैर के फैसले हो जाते हैं। तो जी, चेहरा अल्लाह ताला की तरफ कर लेना उसको क्या कहते हैं, ये भी बता दें, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। चेहरा अपना अल्लाह की तरफ कर लेना इसको क्या कहते हैं? जी, और ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं, चेहरा अल्लाह की तरफ कर लेना जो है ना, इसको रुजू नहीं कहते, यकसू होना। इससे आसान एक वर्ड है, बल्कि इससे आसान एक काम है, ये रुजू जरा मुश्किल काम होता है, यकसू होना तो और भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। सबसे आसान काम वो छोड़ करके आप लोग मुश्किल कामों के ऊपर लगे हुए। एग्जैक्टली, तौबा, इसको कहते हैं तौबा। ठीक है, यू टर्न कर लेना। ठीक है, यानी पहले चेहरा जो है वो जहन्नुम की डायरेक्शन में था, शैतान की डायरेक्शन में था, तागूत की डायरेक्शन में था, अब आपने उसको फेर करके अल्लाह की डायरेक्शन में कर लिया, अल्लाह के नबी। शैतान के अपोज कौन होता है? नबी। और दीन के अपोज कौन होता है? तागूती निज़ाम। ठीक है, तो हर एक का आप ऑपोजिट बना लें, तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फेर लिया ना, इसको कहते हैं तौबा करना। ठीक है, रुजू जो होता है वो होता है चेहरा फेर लेने के बाद जो आप काम करते हैं ना, यानी थोड़ा सा आगे इंक्लाइन होना, झुकना आगे की तरफ या कदम बढ़ाना, इसको रुजू कहते हैं। यू टर्न करने को रुजू नहीं कहते। ठीक है ना, यू टर्न करने को तौबा कहते हैं। फिर उसके बाद जो आप थोड़ा सा अपने आप को झुकाएंगी उस तरफ या आप आगे बढ़ेंगी, उसको कहते हैं रुजू करना। अरबी में उसको इनाबत भी कहते हैं, इनाबत। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इससे जो है ना फिर खैर के फैसले हो जाते हैं इस बंदे के लिए। तो तौबा जो है वो सबसे आसान चीज भी है, सबसे बड़ी चीज भी है, और जो तवल्ला का जो ऑपोजिट है वो तौबा करना ही है। ठीक है, रुजू का लफ्ज अलबत्ता कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा डीप जाएं तो फिर रुजू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्स्ट्रा स्टेप को रुजू करना कहते हैं। बहरहाल, अअता क़लीलन व अकदा, तो इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत थोड़ा दिया और रोक दिया उसके बाद। अकदा यानी रोक दिया। तो फरमाते हैं कि अकदा कुदिया से मुश्तक है, कुदिया उस सख्त पत्थर को कहा जाता है जो किस जो कोई कुआं या बुनियाद खोदते हुए जमीन में निकल आए और खुदाई के लिए रुकावट बन जाए। इसलिए अकदा के मानी ये हुए कि पहले कुछ दिया फिर देने से रुक किया। आयत के शान नुज़ूल में जो एक वाक़ ऊपर बयान हो चुका है इसके मुताबिक तो मानी जाहिर हैं, और इससे कता नज़र की जाए, यानी अगर उस शान नुज़ूल वाले वाक़े से हट करके वैसे देखा जाए तो क्या मानी होंगे, तो मानी ये होंगे कि वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया फिर छोड़ दिया, या शुरू में कुछ अल्लाह ताला की अताअत की तरफ मायल हुआ, कुछ करने लगा फिर छोड़ बैठा। इस लफ्ज़ की ये तफसीर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, अकरमा रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह वगैरह से मनकूल है। ठीक है, तो जो वाक़या था कि वलीद बिन मुग़ीरा था ना, जो कि मुसलमान हो गया था या होने वाला था, उसके दिल में ये पैदा हो गया था कि हाँ मैं आप सरसन की बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर उसका दोस्त दोस्त उसको ले डूबा। ठीक है, ये तफसील पीछे पिछले क्लास में हो चुकी है। वो जो आप लोगों को फिर बाद में मारुफुल कुरान से थोड़ा सा भेजा था सूरह मुमतहना का पैराग्राफ, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा वो कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आया तो उसको क्लियर कर लें, क्योंकि ईमान का मसला है ना। काफिरों से दोस्ती बनाएंगे या बदअकीदा लोगों से दोस्ती बनाएंगे तो फिर ईमान सलामत उसके बाद रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरह से इसको सीरियसली लेना चाहिए। आगे फरमाते हैं, अंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, कि क्या उसके पास गैब का इल्म है और वो उसको देखता है, यानी इतना उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि गैब का इल्म उसके पास मौजूद हो गया। तो फरमाते हैं कि शान नुज़ूल में जो किस्सा बयान हुआ है उसके मुताबिक तो आयत का मतलब ये है कि जिस शख्स ने इस्लाम को इसलिए छोड़ दिया कि उसके किसी साथी ने उसे कह दिया था कि आखिरत का तेरा अजाब मैं अपने सर लेकर तुझको बचा दूंगा, उस अहमक ने इसका यकीन कैसे कर लिया? क्या उसको इल्म गैब हासिल है जिससे वो देख रहा है कि बेशक कुफर की सूरत में वो जिस अजाब का मुस्तहिक होगा वो अजाब ये साथी अपने सर ले लेगा और मुझे बचा देगा, जो जाहिर है कि सरासर धोखा है। ना उसको इल्म गैब है ना कोई दूसरा आदमी किसी का अजाब आखिरत अपने सर लेकर उसको बचा सकता है। और अगर इस किस्से से कतअ नज़र की जाए तो मानी आयत के यह होंगे कि वो शख्स जो अल्लाह की राह में खर्च करता करता रुक गया है और खर्च करना छोड़ दिया है, तो उसकी वजह यही हो सकती है कि उसको ये ख्याल हुआ होगा कि मौजूदा माल खर्च कर दूंगा तो फिर कहाँ से आएगा। इस ख्याल की तरदीद में फरमाया कि क्या उसको गैब का इल्म है जिसके ज़रिए गोया वो ये देख रहा है कि ये माल ख़त्म हो जाएगा और इसके बजाय और माल उसको नहीं मिल सकेगा। ये गलत है क्योंकि ना उसको गैब का इल्म है और ना ये बात सही है, क्योंकि कुरान करीम में हक तआला का इरशाद है, मा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। ठीक है, कि यानी जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसका बदल तुम्हें दे देते हैं और वो सबसे बेहतर रिज़्क देने वाले हैं। अनफक्तुम, तुम खर्च करते हो, तुम इन्फाक करते हो, तो इन्फाक का जो लफ्ज़ है ना, ये जुए में लगा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि अगर तुम जुए में अपना पैसा लगा दोगे तो अल्लाह तुम्हें और दे देगा, या शराब में या हेरोइन नशा करने में अगर तुम अपना पैसा लगा दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और दे देगा। ठीक है ना, क्यों? इसलिए कि अनफक्तुम का जो लफ्ज़ है ना वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के मानी में ही इस्तेमाल होता है, अल्लाह के रास्ते में, यानी हलाल काम के अंदर। ठीक है, हराम में नहीं, हलाल में अगर तुम अपने पैसे को खर्च करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा। ठीक है, तो ये वादा हराम के साथ नहीं है, ये वादा हलाल के साथ है। अगरचे के अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो खर्च करना बस, अब चाहे आप हराम में खर्च करें चाहे हलाल में खर्च करें, लेकिन लफ्जी तर्जुमे से बात नहीं समझ में आती, गलत समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना यानी अपने अहलो आयाल के ऊपर खर्च करना, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करना, ये सबसे अफजल खर्च करना है हलाल के लिए। नहीं कि बीवी बच्चों के लिए टीवी लेकर के आ रहे हैं तो बीवी बच्चों के लिए जो है ना वो म्यूजिक स्टूडियो रिकॉर्डर लेकर के आ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो हराम किस्म के कपड़े लेकर के आ रहे हैं, नहीं, बीवी बच्चों के लिए भी हलाल में खर्च करना, जरूरियात जिनको कहते हैं, या उनके लिए जो जो नेसेसरी एंटरटेनमेंट है, हलाल एंटरटेनमेंट। ठीक है ना, उनकी हवाखोरी के लिए, उनकी सैर व तफरी के लिए, उनके जो है वो खाने पीने के लिए, राइट, उनके दीन के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट उनके दीन के लिए खर्च करना, कारी साहब रखना बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, उस्ताद रखना बच्चों को इल्म पढ़ाने के लिए, राइट, ये सब खर्च जो है वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च है, लेकिन ये हलाल और सबसे पाकीज़ा खर्च है, सबसे अफजल खर्च है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने दूसरे रिश्तेदारों के ऊपर, फिर अपने पड़ोसियों के ऊपर, फिर अपने अपने मुआशरे के जो गरीब लोग हैं, ये तो सभी जानते हैं इस बात को, इस बात को तो सब समझते हैं गरीबों पे खर्च करना, लेकिन अपने बीवी बच्चों को सब अमीर समझते हैं, उनके ऊपर खर्च नहीं करते हलाल चीज़ों के अंदर। हाँ, हराम में ज़रूर खर्च करेंगे अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन हलाल में अपनी बीवी बच्चों के लिए खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब खर्चों का अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है कि अल्लाह ताला और देगा, क्योंकि ये जो है ना, ये एक एक सुरंग की मानिंद है कि जैसे सुरंग के अंदर जो टनल होती है ना मक्का मुकरमा में, जैसे टनल्स हैं, तो इसका उसूल क्या होता है कि गाड़ी जब आएगी उस टनल के अंदर ना, तो अगर वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी ना, तो फिर पीछे से और गाड़ियां भी आती रहेंगी, लेकिन अगर वो टनल में आई और फिर खड़ी हो गई, तो पीछे से जो गाड़ियां आएंगी वो सारी फिर ब्लॉक हो जाएंगी, और फिर वो टनल जो है ना वो फिर उसमें ट्रैफिक जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद सांस घुटना शुरू हो जाएगी, लोगों की ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और लोग मर जाएंगे, ये टनल के अंदर होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने टनल की मिसाल दी है, उसको नफक कहते हैं अरबी में, नफक, ठीक है, कि टनल में, यानी तुम एक टनल की माने दो, तुम्हारे पास जो रिस्क आ रहा है, इस रिस्क को तुम आगे देते रहोगे तो पीछे से और आता रहेगा, और अगर नहीं दोगे, अपने पास बचा बचा के रखना शुरू कर दोगे ना, तो तुम घुट घुट करके बिलाखिर रूहानी मौत मर जाओगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला उसका बदल तुम्हें दे देते हैं, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाले हैं। इंसान गौर करे तो कुरान का ये इरशाद सिर्फ माल और पैसे के मामले में नहीं, बल्कि हर कुव्वत और तवानाई जो वो दुनिया में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके बदन में उसका बदल मा यतहल्लल पैदा करते रहते हैं, ठीक है। यानी जितना उसने तहलील किया, तहलील करना पता है ना, जितना तहलील करने का मतलब क्या होता है कि यानी तहलील हो गया, क्या कहते हैं उसको, यानी जैसे कि घुल गया, घुलना कहते हैं ना, कोई चीज घुल गई, घुल करने, घुल करके वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो तहलील यानी तुम जितने अपने बॉडी के जो जो तुम्हारे पार्ट्स हैं, तुम उनको जितना घुलाओगे अल्लाह ताला और पैदा कर देंगे, तुम अपने वक्त को जितना घुलाओगे अल्लाह के रास्ते में, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला और पैदा कर देंगे, ठीक है। तो वही फरमाते हैं कि वरना अल्लाह के इंसान के बदन का एक एक उज़्व अगर फौलाद का भी बना होता, तो 60-70 साल काम लेने से कभी का घिस घिस के बराबर हो जाता, घिस घिसा कर बराबर हो जाता। जिस तरह अल्लाह ताला इंसान के तमाम आज़ा में जो कुछ मेहनत से तहलील हो जाता है, खुदकार मशीन की तरह उसका बदल अंदर से पैदा कर देते हैं, इसी तरह माल का भी मामला यही है कि इंसान खर्च करता रहता है, उसका बदल आता रहता है। बयान में भी पिछले जुमे को इस तरह की ये वाली बात हुई थी, तो उसमें भी इस आर्टिस्ट ने कहा था ना कि अगर आप गूगल पर ही सर्च करके देखें तो आपको शायद मिल जाएगा कि जो इंसान की बॉडी होती है उसके अंदर बॉडी सेल्स जो है ना वो रिप्लेस होते रहते हैं, हमारे बॉडी सेल्स मुस्तकिल मरते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, हत्ता के एक सर्टन टाइम भी साइंस ये डॉक्टर्स ने लिखा है कि इतने अरसे के अंदर इंसान के जिस्म के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, सारे के सारे सेल्स, यानी मर 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 करके ना वो सारे जो है वो नए बन जाते हैं। तो ये एक सिस्टम अल्लाह ताला का चल रहा है, ये बॉडी सेल्स की रिप्लेसमेंट वाला सिलसिला जो है वो ये जमादात में नहीं होता, ठीक है, ये यानी फौलाद है या पत्थर है या उसमें नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो जब भी तो वो लिविंग थिंग्स नहीं कहलाती है ना, कि उनके अंदर बॉडी सेल्स जो है वो रिक्रिएट हो रहे हैं, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर चीजें जो है वो घिसती हैं, है ना, पानी से घिसती हैं, घिस घिस करके वो किसी और चीज में तब्दील हो जाती हैं। उस पत्थर की अपनी जो जो बॉडी है वो बॉडी कटती रहती है, टूटती रहती है अगर वो पानी के अंदर रहता है ना, हत्ता के पानी अगर ना भी हो, फिजा से, हवा से, क्या कहते हैं उसके लिए खास वर्ड्स होते हैं, किसी को अगर वो वर्ड याद हो, जिससे कि वो तो वो यानी हवा से भी जो है ना वो लोहा तक कटता रहता है, और कट करके वो किधर जाता है, वो फिर किसी और चीज में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब वो लोहे की जो अपनी बॉडी है ना, वो छोटी होती जाती है, उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती। देखिए इंसान की बॉडी कैसी है कि इंसान की बॉडी में एक चीज मरती है तो दोबारा से अल्लाह ताला उसको पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह उसमें होता है उसी तरीके से माल के अंदर भी ऐसे ही होता है और सलाहियतों में भी ऐसे ही होता है कि हम अपनी सलाहियत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला हमें और सलाहियतें अता फरमाते हैं। अपने वक्त को अल्लाह ताला में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला हमारे वक्त में और बरकत अता फरमा देते हैं, ठीक है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि अनफिक या बिलाल वला तख्श मिन ज़िल अर्श इक़लालन, कि ए बिलाल अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और अर्श वाले अल्लाह ताला की तरफ से उसका इसका खतरा ना रखो कि वो तुम्हें मुफलिस कर देगा, ठीक है। यानी इस खौफ में ना रहना कि खर्च करने से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये एक अल्लाह ताला का ऐसा उसूल है जो कि तब्दील नहीं होता, ठीक है ना, कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसको अल्लाह ताला और देते हैं। अब मसला खाली ये होता है कि ज़ाहिर है कि एक तो ये कि हमारा ईमान कमज़ोर होता है, हमें अल्लाह की बातों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर वैसा एतमाद नहीं होता, ठीक है। तो उस एतमाद की कमी की वजह से हमें ये खौफ रहता है कि हम खर्च कर देंगे तो फिर क्या करेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये जो खौफ होता है ना, इस खौफ की एक तो ये कि एक रूहानी खौफ या एक नफ्सियाती खौफ हमारे अंदर होता है, लेकिन इस नफ्सियाती खौफ और रूहानी खौफ की भी वजह बन जाती है कुछ। उसकी वजह क्या बन जाती है? वजह सिर्फ ये बनती है कि हमारी जो अगेन तवज्जो है ना, वही तवज्जो वाली बात जो शुरू में करी थी, हमारी जो तवज्जो है ना, तो हमारी तवज्जो की जो निगाहें हैं, ठीक है ना, बिकॉज जब चेहरा होता है ना, तवज्जो तो चेहरे से निकला ना, लफ्ज वज से निकला ना, लेकिन आप पूरे चेहरे से तो कोई चीज देखते तो नहीं है ना। देखने के लिए तो चेहरे में जो निगाहें होती हैं उन्हीं से आप देखते हैं, तो इसी वजह से तवज्जो की निगाहें, ठीक है ना, तवज्जो की निगाहें, ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखना तो निगाहों से ही होता है। तो इस वजह से जो हमारी तवज्जो की निगाहें हैं ना, वो अगर अल्लाह की तरफ हैं भी, बल्कि सॉरी, तवज्जो की निगाहें नहीं, अगर हमारी तवज्जो, अगर हमारा वज अल्लाह की डायरेक्शन में है भी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है ना कि आपकी निगाहें जो हैं वो झुकी हुई हों, नीचे की तरफ हों, ऊंचा नहीं देख रही हो। तो अगर आप किसी डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, आपका चेहरा उसी डायरेक्शन में है, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, बल्कि आपने अपनी निगाह जो है ना वो या तो दाएं बाएं की हुई है, ठीक है, या आपने नीचे की तरफ की हुई है, तो उससे क्या होगा कि चेहरा उस डायरेक्शन में होने के बावजूद आप उसको देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ भी जब हम दीन के रास्ते पे चलना शुरू भी कर देते हैं ना, यानी हम तौबा कर लेते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को अल्लाह ताला की डायरेक्शन में खड़ा कर देते हैं, फिर भी हमारी निगाहें जो है ना वो शॉर्ट साइटेड होती हैं, ठीक है ना, यानी बहुत हमारी निगाहें आगे नहीं देख रही होती, बल्कि बहुत करीब देख रही होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ना असबाब नजर आ रहे होते हैं, असबाब कि मुझे रिस्क जो मिल रहा है वो दफ्तर से मिल रहा है, मुझे रिस्क जो मिल रहा है वो दुकान से मिल रहा है, या मुझे रिस्क जो है ना वो किसी और जो भी आपका जरिया है वहां से मिल रहा है मुझे रिस्क, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो मुसब्बिबुल असबाब मौजूद है, उसके पीछे भी और उससे बड़ा, यानी खाली अल्लाह ताला पीछे तो नहीं खड़े हुए असबाब के, बल्कि अल्लाह ताला तो असबाब से बड़े भी तो है ना, लेकिन चूंकि हमारी निगाहें अल्लाह ताला पर नहीं है अभी भी, ठीक है ना, चेहरा तो अल्लाह की तरफ है लेकिन निगाहें अल्लाह ताला की तरफ नहीं है अभी भी, तो इस वजह से हमारे ऊपर ये खौफ रहता है कि असबाब खत्म हो गए तो फिर रिस्क भी खत्म हो जाएगा, हालांकि रिस्क असबाब के वास्ते से आ रहा है, असबाब से तो रिस्क नहीं मिल रहा ना हमें, असल में तो अल्लाह ताला उस असबाब के अंदर रिस्क डाल रहे हैं, उसके जरिए से हमें मिल रहा है। अगर असबाब खत्म भी हो गए तो भाई अल्लाह ताला तो नहीं खत्म हो रहा, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला किसी और सबब के जरिए से हमें रिस्क देना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से तौबा करने के बाद भी हमें मेहनत करनी पड़ती है अपनी निगाहों को अल्लाह ताला पर जमाने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है तौबा के बाद, ठीक है, कि निगाहों को भी अल्लाह ताला के ऊपर जमाएं और असबाब से जो है ना वो निगाहों को हटाएं, ठीक है। इसी वजह से तौबा पे बात खत्म नहीं हो जाती बल्कि तौबा से बात शुरू होती है, ठीक है ना, तौबा से बात शुरू होती है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो यहाँ पर करके आज आगे बढ़ेगा, वो ये कि असबाब की कुछ शक्लें भी होती हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं असबाब की रिस्क कमाने के लिए। तो एक रिस्क जो होता है वो आपको मिलता है किसी की नौकरी करके, ठीक है, नौकरी करके। और दूसरा रिस्क का तरीका यानी रिस्क के असबाब की दूसरी शक्ल क्या होती है कि आप जो है वो तिजारत करें, बिजनेस करें, ठीक है ना। दोनों रिस्क की शक्लें हैं, दोनों रिस्क के असबाब हैं, है ना, लेकिन नौकरी में और तिजारत के दरमियान काफी फर्क है, ठीक है। नौकरी में और तिजारत में सबसे बड़ा फर्क क्या है, चलें आपसे पूछते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, असबाब, मुसब्बिबुल असबाब, हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो जरा सोचें इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फर्क बतलाना चाहें कि नौकरी और तिजारत में क्या फर्क है, अगर इस तनाजुर में उसको देखें तो क्या सबसे बड़ा फर्क हमें नजर आता है नौकरी करने में और तिजारत करने में, कोई बता सकता है? नौकरी और तिजारत में सबसे मेजर फर्क क्या है? Working for someone else versus working for yourself. बिल्कुल ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते तो फिर तो हम आपके जवाब को बिल्कुल 100% के तौर पर कबूल कर लेते हैं, लेकिन अभी हम इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ रहे ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं ना, और हम तो यानी रूहानियत की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका जवाब जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में 100% नहीं है। नौकरी करने में हम दूसरों के ताबे होते हैं, ताबे होते हैं, ठीक है, ताबे होते भी हैं, लेकिन वो तो तिजारत में भी किसी के ताबे हो सकते हैं, तिजारत में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ताबे हमें होना पड़ता है, मार्केट स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो आपकी प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपकी दुकान की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप दुकान ऐसी नहीं बना सकते, आप ये चीज़ नहीं बेच सकते, वो नहीं बेच सकते, तो आपको ताबे तो बहुत सारी चीज़ों का होना पड़ता है तिजारत में भी। नौकरी में वसाइल महदूद होते हैं और तिजारत में लामहदूद होते हैं। कैसे लामहदूद होते हैं? तिजारत में भी बहुत सारे महदूद वसाइल हो सकते हैं, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो फिर आपके पास लामहदूद वसाइल तो नहीं हो ना, आपकी दुकान जो है वो 10 फीट बाय 10 फीट की दुकान है तो लामहदूद कैसे वसाइल हो गए तिजारत के अंदर? तवक्कुल, एक लफ्ज़ से तो बात नहीं बनेगी, कुछ और बताना पड़ेगा आपको। तिजारत में तवक्कुल नेसेसरी है। अब आ रहे हैं आप लोग ज़रा काम की बात पर, अब कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आपने जवाब देना शुरू किया है, ठीक है। तो नौकरी के अंदर क्या होता है, आप यू वर्क फॉर समवन, तो व्हाट डज इट मीन वर्क फॉर समवन, मतलब ये होता है कि आप उसके साथ ना एक क्या लिखा आपने नौकरी में सबक पे नजर, बिजनेस में मुसब्बिबुल अज़बाब पे नजर, बशर्ते कि आप ईमान वाले हों, तब वरना काफिर भी तो बिजनेस करता है, वो मुसब्बिबुल अज़बाब पे नजर तो नहीं रखता, ठीक है। लेकिन बात आपकी सही है कि नौकरी में जो है ना वो क्या होता है, आप किसी के साथ तय कर लेते हैं कि जी मैंने इतना मेहनत करनी है, मैं 30 दिन या मैं 25 दिन आपके यहाँ आकर के नौकरी करूँगा, 8 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक, ठीक है ना। लेकिन इसके एंड में ना आपने मुझे एक सेट सैलरी देनी है, ठीक है ना, 30,000 रुपये देने हैं या आपने 10,000 रियाल देने हैं या $5,000 देने हैं, ठीक है, ये आपने सेट कर लिया। अब आप उसमें जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा भी कर रहे हैं कम भी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुश हो जाएगा ना, तो आपको कुछ बोनस दे देगा, वरना सैलरी तो आपने सेट करी हुई है उसके साथ, है ना। जॉब में यू विल गेट समथिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, इन बिजनेस व्हेन यू विल डू यू विल गेट, क्या कोई शर्त है इसके ऊपर? व्हेन यू विल डू यू विल गेट, जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है ना। जॉब में आपको एक एक आपने सेट किया हुआ है मामला, ठीक है ना, कि जी सैलरी है आपको मिलनी है, अब आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो भी आपको वही सैलरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा, और अगर आप कम काम करेंगे तो भी जो है ना वो कुछ अरसे तक, जब तक कि वो आपको जॉब से निकाल नहीं देता, उस वक्त तक जो है ना आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो उससे क्या होता है कि जो काम करने वाला बंदा होता है ना, तो साइकोलॉजिकली उसकी निगाहें जो है ना वो सबब के ऊपर फिक्स हो जाती हैं, क्योंकि उसको हर महीने सैलरी मिलती है किसी बंदे के हाथ से, या एचआर डिपार्टमेंट के हाथ से मिलती है, कोई पेचेक मिलता है, या बैंक में आ जाती है उसकी सैलरी। तो जो सबब है ना वो उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट मेरा सबब है, कंपनी मेरा सबब है। इसके बरक्स बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप बहुत मेहनत कर लें, बहुत अच्छे जो है वो दुकान सेट कर लें, बहुत अच्छे जो है वो कॉन्टैक्ट्स बना लें, लेकिन कस्टमर, बिजनेस में आपका मामला कस्टमर के साथ होता है, कस्टमर के दिल में ये बात आएगी कि वो आपसे परचेज करे तब फायदा होगा, वरना आपकी इन तमाम मेहनतों का कोई फायदा नहीं होगा। जरा देखें ना, कभी कभी आप दुकान पे बैठी हैं, अगर बैठी होती हैं तो आपको ज्यादा पता होता है, या जो बैठे हैं उनको पता होगा, जब दुकान पे बैठते हैं ना और आगे से लोग चल के जा रहे होते हैं, तो उस वक्त दिल में, फिर वो अगर ईमान वाला होता है तो फिर वो दिल से दुआएं लेके, ऐ अल्लाह इसके दिल को मेरी दुकान की तरफ फेर दे, फिर मेरी दुकान में आने के बाद ये खाली इधर उधर की बातें करके चला ना जाए कहीं, इसके दिल में ये बात डाल दे कि मुझसे कुछ खरीद भी ले, दिल का मामला। और ये दिल कौन कंट्रोल करेगा? आप नहीं कर सकते। आप कस्टमर को फोर्स कर सकते हैं, हाँ झूठ तो बोल सकते हैं उसके साथ, उल्टी सीधी बातें बना करके अपना अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो कस्टमर है, एंड द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये सेल्स डिपार्टमेंट वाले इस बात को, इनके यहाँ एक स्लोगन चलता है, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बहरहाल, तो उसके दिल के को कौन इस आपकी तरफ मोड़ेगा, कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदवाएगा, ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो अब ये जो ईमान वाला अगर बिजनेसमैन बैठा होता है ना दुकान में, तो उसको फिर नजर आ रहा होता है कि उसकी मेहनतें किसी काम की नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जहानत, उसकी ताल्लुकात, उसकी सारी चीजें किसी काम की नहीं है, कस्टमर के दिल को तो अल्लाह ही ने फेरना है। इस वजह से तिजारत में अल्लाह ताला ने, नबी अलैहि सलाम ने क्या बताया, 9 गुना ज्यादा बरकत रखी है, 9 गुना, बल्कि 9 बरकत नहीं, 9 गुना रिस्क तिजारत में रखा है, और 1 गुना रिस्क अल्लाह ताला ने सिर्फ नौकरी के अंदर रखा है। 1 गुना भाई, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह ताला ने तिजारत में क्यों रखा है? इसलिए कि तिजारत के अंदर एक तो रिस्क होता है, नौकरी में ज्यादा रिस्क नहीं होता, हाँ निकाल सकते हैं आपको कभी, लेकिन अदरवाइज जब हालात अच्छे चल रहे हैं तो नौकरी चल रही है, बड़े माशाल्लाह लोगों ने पूरी पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं एक नौकरी के अंदर, है ना, तो वहां पर रिस्क नहीं होता इतना, बहुत थोड़ा सा होता है, जबकि तिजारत के अंदर रिस्क ही रिस्क होता है। दूसरी बात ये कि तिजारत के अंदर बंदे की जो तवज्जो होती है ना वो अल्लाह की तरफ लगती है, नौकरी के अंदर बहुत मुश्किल। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है इस बात की, आप देखें दीन पर खर्च करने वालों को, जो दीन पर खर्च करते हैं, मदारिस पर खर्च करते हैं, उलमा पर खर्च करते हैं, तिजारत वालों की जे अगर उनको बहुत बड़ी सैलरी मिलती भी है ना तिजारत वालों को, वो उसमें से अगर ना अगर 1% भी खर्च कर देना, एहसान जताएंगे, या बहुत मुश्किल होगा उनके लिए 1% भी खर्च करना, बल्कि 1 से भी कम% खर्च करना तिजारत वालों के लिए, अगरचे कि वो लाखों में कमा रहे हैं फिर भी, लेकिन जो तिजारत वाले लोग होते हैं अल्लाह ताला ने उनको दिल भी बड़ा दे दिया होता है, इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं। वजह क्या होती है? इसलिए कि वो देख रहे होते हैं, वो रोजाना इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि देखो मेरे पास जो आ रहा है ना ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है,
और अल्लाह देता है, मेरा ऐसा मामला हो गया, फिर मैं ये मुश्किल होगी, वो मुश्किल होगी, फिर अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किल से निकाल दिया, है ना। उनके यहाँ ये मद्दोजजर जो है ना, ये ऊंच नीच मद्दोजजर, ये तब्दीलियां ये हर वक्त होती रहती हैं बिजनेस के अंदर, जबकि सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना वो फिक्स होती है, वहां पर ये सारी चीजें हो ही नहीं रही होती, तो इंसान की तवज्जो उधर से हट जाती है, अल्लाह की तरफ से हट जाती है। ठीक है, तो जब अल्लाह की तरफ नजर हो जाए तो फिर उसके बाद फिर खर्च करना भी आसान हो जाता है, और जब अल्लाह की तरफ से नजर जो है वो हटी हुई होती है, दूसरी तरफ लगी हुई होती है, बेशक आपका चेहरा अल्लाह की तरफ ही, आप बड़े मौलवी साहब हैं, आप बड़ा आपका दीनदार है, यानी दाढ़ी वाड़ी सब है, और आप नमाज भी पढ़ते हैं, और आप पर्दा भी करती हैं, और आप ये भी करते हैं, लेकिन अगर तवज्जो आपकी जो है वो असबाब में लगी हुई है, तो फिर आपने कहाँ से खर्च करना है आगे। ठीक है ना, तो फरमाते हैं कि अच्छा, अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ्फा, कैसा आयत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक खास सिफत वफा बयान फरमाई गई है। वफा, वफा के मानी किसी वादे या मुआहदे को पूरा कर देने के आते हैं। ठीक है, तो वफा के मानी को तो फिर खवातीन ज्यादा और कौन समझ सकता है। हजरत इब्राहिम क्योंकि क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि एक तो ये कि खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे वाली और हमारे दीन पर जो अमल करने वाली होती हैं, और वैसे भी ईस्टर्न मुआशरा जिसको अमूमी तौर पर बड़े सगीर पाक हिंद का मुआशरा कहा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन के अंदर वफादारी जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है पूरी दुनिया के मुकाबले में। अगरचे के जाहिर है दुनिया के पीछे भागेंगे तो फिर दुनिया की वजह से फिर वफादारी भी कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इन जनरल वफादारी खवातीन में ज्यादा होती है। फिर दूसरी बात ये कि फिर खवातीन दूसरों से वफादारी जो है वो एक्सपेक्ट भी कर रही होती हैं, क्योंकि वो वफादारी कर रही होती हैं, तो फिर आगे से फिर रेसिप्रोकेशन भी जा रही होती हैं, तो इस वजह से वफादारी के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो खवातीन से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास सिफ़त ईफ़ाए अहद की कुछ तफसील, मुराद ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से अहद किया था कि वो अल्लाह ताला की अताअत करेंगे और उसका पैगाम मखलूक को पहुंचा देंगे, उन्होंने इस मुआहदे को हर हैसियत से पूरा कर दिखाया, जिसमें उनको बहुत सख्त आजमाइशों से भी गुजरना पड़ा। वफा की यही तफसीर इब्न जरीर और इब्न कसीर वगैरह ने इख्तियार की है। ठीक है, अहद को पूरा कर दिखाना। बाज़ रिवायात हदीस में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खास खास आमाल को लफ्ज वफा का सबब बताया गया है, वो इसके मुनाफी नहीं है, क्योंकि असल वफाए अहद आम है। ठीक है ना, यानी इसका आम मफहूम, उमूमी जनरलाइज मफहूम जो है ना, वो फिर अल्लाह ताला के सारे हुक्मों की अताअत में शामिल है। लेकिन कुछ मुफस्सरीन ने, जैसे बल्कि सॉरी, बाज़ रिवायात हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने उनके खास खास अमल को, कि वो ये करते थे इस वजह से अल्लाह ताला ने वफा फरमाया, या वो ये करते थे इस वजह से वफा फरमाया। ठीक है, तो बहरहाल दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, क्योंकि असल वफाए अहद आम है। तमाम अहकाम इलाहिया की तामील व अताअत, जिसमें अपने अपने आमाल भी दाखिल हैं और फराइज रिसालत नबूवत के जरिए आम खल्कुल्लाह की इस्लाह भी, इन्हीं आमाल में ये अमल भी हैं जिनका जिक्र उन रिवायात हदीस में है। मसलन इब्ने अबी हातिम ने हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और फिर उनसे फरमाया कि तुम जानते हो कि वफ़ा का मतलब क्या है, तो अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुराद ये है कि वफ़ा अमला यौमी ही बअरबा रकअतिन फी अव्वल नहारी, के यानी उन्होंने अपने दीन के आमाल की तकमील इस तरह कर दी कि शुरू दिन में 4 रकत नमाज इशराक की पढ़ ली। ठीक है, यानी जो इशराक की नमाज फजर की का जो वक्त खत्म होता है, तो उसके बाद फिर सूरज के तुलू होने का टाइम होता है, जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो वो जब सवा नेज़े से ऊपर सूरज चढ़ जाता है 15-20 मिनट के अंदर अंदर, तो उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो वो वक्त जो होता है ना, उस वक्त अगर आप 2 रकत नफिल या 4 रकत नफिल पढ़ लें, तो उसको कहते क्या है, इशराक की नफिल कहते हैं। इसके अंदर कोई खास सूरतें नहीं लगानी होती, इशराक की नफिल के अंदर जो है वो अगर आप यानी इशराक की नफिल का मतलब ये है कि पहली रकत के अंदर फलानी सूरत लगाना है और दूसरी रकत में फलानी सूरत लगाना है तो फिर वो इशराक की नफिल बन जाएगी। नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सूरतों से, और ज़ाहिर नमाज के तरीके में भी कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज़ में है? वक्त में। अगर आप उस वक्त में यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर के 1 घंटे बाद तक कोई नमाज पढ़ेंगे नफिल की नियत से तो वो इशराक की नफिल कहलाएगी, ठीक है। और अगर 1 घंटा गुजर गया सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेकर के 1 घंटा गुजर गया, अब आप कोई नफिल पढ़ रहे हैं, बेशक पढ़ सकते हैं क्योंकि मकरू वक्त तो नहीं है वो नफिल पढ़ने का, पढ़ सकती है नफिल, लेकिन वो नफिल अब इशराक की नफिल नहीं कहलाएगी। अब वो क्या कहलाएगी? अब वो नफिल कहलाएगी चाश्त की, जिसको कि अरबी के अंदर वहा भी कहते हैं, वहा, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, इशराक की नफिल, चाश्त की नफिल, या मगरिब के बाद अगर आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने के बाद आप कोई नफिल पढ़ लें तो वो नफिल क्या कहलाएगी? वो नफिल अवाबीन की नफिल कहलाएगी। और रात के तीसरे पहर में या कुछ उलमा के नजदीक इशा की नमाज मुकम्मल करने के बाद अब आप जो भी नफिल पढ़ें, चाहे वो रात के दूसरे पहर में हो, चाहे वो पहले पहर में हो, चाहे वो तीसरे पहर में हो, उस टाइम में जो भी नफिल पढ़ेंगे वो नफिल क्या कहलाएगी? तहज्जुद की नफिल कहलाएगी, ठीक है। तो ये चार जो है वो मेन नफिलें होती हैं जिनका ताल्लुक वक्त के साथ होता है, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन और तहज्जुद, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि चूंकि वो रोजाना जो है ना इशराक की नफिल पढ़ लिया करते थे 4 रकत, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको वफ़ा फरमाया, ठीक है। इसकी तायीद इस हदीस से भी होती है जो तिर्मिजी ने हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम इरका अली 4 रकआत मिन अव्वल नहारी अकफिका आखिरा, ठीक है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम के बेटे, तू शुरू दिन में मेरे लिए 4 रकतें पढ़ दिया कर, तो मैं आखिर दिन तक तेरे सब कामों की कफालत करूंगा, ठीक है। और इब्ने अभी हातिम ही ने एक रिवायत हजरत मुआज इब्ने अनस से नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बतलाऊं कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लज़ी वफ़ा का खिताब क्यों दिया। फिर फरमाया कि वजह यह है कि वो रोजाना सुबह शाम होने के वक्त ये पढ़ा करते थे, फसुबहानल्लाही हीना तुमसूना व हीना तुसबिहूना व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी व अशिय्यन व हीना उभिरून, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की तस्बीह इस तरह बयान करते थे कि अल्लाह ताला पाक हैं शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी, और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं आसमानों में भी और जमीन में भी और रात के वक्त में भी और जुहर के वक्त में भी, ठीक है ना। यानी ऐसी तस्बीह सुभान अल्लाह के तमाम औकात उसके अंदर कवर हो गए एक ही जुमले के अंदर। जैसे कि एक और तस्बीह नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जौजा हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला को सिखाई, वो भी इसी किस्म की तस्बीह है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, उसमें भी इसी किस्म का मफहूम है कि एक जुमले के अंदर आपने ऐसी तस्बीह बयान करी है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह की जो कलिमात होते हैं ना, तो इनसे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि अक़ल भी थोड़ी इस्तेमाल की जाए, अक़ल को परे रखना जो है ना, जो शैतान चाहता है कि हम परे रख करके सारे काम किया करें ना, ये फिर ले डूबता है इंसान को। तो शैतान फिर क्या इसके अंदर अपना अपना क्या डालता है, अपना हिस्सा, वो ये करता है कि बस ये पढ़ लो और बस कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी तवज्जो फराइज पर से हटाने की कोशिश करता है, फराइज पर से हटा करके इन तस्बीहात और नवाफिल के ऊपर जमाने की कोशिश करता है, ये शैतान करता है। और जो उसकी बात मान लेता है उसको ये नवाफिल और तस्बीहात फिर फायदा नहीं दे रही होती, जो शैतान की बात मान करके फराइज पर से तवज्जो हटा देता है अपनी और इन नवाफिल और तस्बीहात के ऊपर जमा देता है, इनको वजीफे भी कहा जाता है हमारे यहाँ, तो वो फिर शैतान की मानने वाला बन जाता है। उसको ये मुकाम हासिल नहीं हो रहे होते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हासिल हुए हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि फराइज पक्के किए जाएं और साथ साथ नवाफिल भी किए जाएं। ठीक है, तो एक औरत जो है वो रोजाना सुबह इशराक पढ़ती है लेकिन पर्दा नहीं करती, वो हरगिज हरगिज वफा के मफहूम में दाखिल नहीं हो सकती, चाहे उसकी इशराक जो है वो 40 साल तक कजा नहीं होती हो, ये औरत वफा में शामिल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि फर्ज पे अमल नहीं कर रही है। ठीक है, तो फराइज पूरे करना यानी नवाफिल जो है वो फराइज से इंसान को सुबुकदोश नहीं कर देते। ये और बात है कि अगर वो फर्ज पर अमल करना चाहती है, कन्विंस्ड है कि उसको अमल करना है और वो चाहती है और मेहनत कर रही है उसके लिए, लेकिन कर नहीं पा रही और अपनी कमजोरी का अल्लाह ताला के सामने एतराफ करती है, अल्लाह ताला से माफियां भी मांगती रहती है, ऐसी औरत अगर साथ साथ इशराक की नमाज पढ़ रही हो, तस्बीहात पढ़ रही हो, तो उसकी इस दिल की कैफियत की वजह से अल्लाह ताला उसकी इन तस्बीहात और इशराक को भी कबूल फरमा लेंगे। लेकिन एक औरत है जो कहती है पर्दा तो आंखों का होता है जी, हालांकि आंखों को कोई कवर नहीं करती, पर्दा और पर्दा आंखों का होता है तो कवर करो ना आंखों को, उसको तो पता ही नहीं है पर्दे का मतलब क्या होता है, इस किस्म की फजूल की बातें करती है। या ये कि कहती है कि नहीं, पर्दा तो मौलवियों का इजाद किया हुआ है, पर्दा दीन में तो होता ही नहीं, ये तो मौलवियों ने जो है ना वो पर्दे का कॉन्सेप्ट इजाद किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस किस्म का एटीट्यूड रखने वाली औरत अगर 10,000 मरतबे भी रोजाना ये वाली तस्बीह पढ़ेगी ना, तो सवाब मिलना तो दूर की बात, ये औरत तो शायद इस्लाम के दायरे से ही खारिज होती है शायद, अगर इसके डिपेंडिंग ऑन हर एटीट्यूड। ठीक है ना, तो तस्बीह से इसको क्या फायदा होना है अगर ये इस्लाम के दायरे से ही फारिग हो चुकी है, तो पर्दा जो है वो यानी कुरान का हुक्म और नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म और इजमाए उम्मत से हर तरह से पर्दा साबित, और ये कहती है कि नहीं, ये तो मौलवियों का इजाद किया हुआ है, ये मुसलमान किधर से रही फिर उसके बाद। बहरहाल, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसको याद रखें ताकि शैतान के धोखे में आकर के जो है वो वज़ाइफ के जरिए से ना पतली, वो हमारा कहते हैं पतली गली से निकलना, तो जन्नत में जाने के लिए पतली गली जो है ना ये वज़ाइफ वाली, ये ऐसी कोई पतली गली नहीं होती है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आगे सुहफ़े मूसा व इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास हिदायात व तालीमात। अंबियाए साबिकीन में से जब किसी का कौल या कोई तालीम कुरान में जिक्र की जाती है तो उसका हासिल ये होता है कि उस उम्मत के लिए भी वो वाजिबुल अमल है, इस उम्मत के लिए भी, उसने इस उम्मत के लिए भी वो वाजिबुल अमल है जब तक उसके खिलाफ कोई नस्से शरी ना हो। आगे 18 आयतों में उन खास तालीमात का जिक्र है जो हजरत मूसा व इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में थी। इनमें अमली अहकाम जिनका ताल्लुक सादका आयात के साथ है वो सिर्फ दो हैं, बाकी तालीमात इबरत व नसीहत और हक तआला की आयात कुदरत से मुताल्लिक हैं। ठीक है, तो आगे छोटी छोटी 18 आयतें हैं सूरत के आखिर तक, फरमाते हैं कि उन 18 में उन अहकाम का जिक्र है जो कि इन दोनों जलील कदर अम्बिया उलुल अजम, इनको जलील कदर अम्बिया भी कहते हैं, इनको उलुल अजम अम्बिया भी कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तीन और भी हैं, बल्कि चार और भी हैं, वो कौन से हैं? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर नबी अलैहिस्सलाम, ये 6 उलुल अजम अम्बिया कहलाते हैं। तो इनमें से दो के ऊपर ना अल्लाह ताला ने एडिशनल सहाइफ नाजिल किए थे जिनके अंदर ये सारी तालीमात थी जो 18 आयतें अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। तो दो तो उनमें अहकामात हैं और बाकी जो है वो इबरत और नसीहतें हैं। तो अहकामात जो है वो अल्लाह तजर वाजिलतों जरा उखरा से शुरू होते हैं, तो ये चूंकि पूरा एक कॉन्सेप्ट है तो वो हम अगली क्लास में शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है तो शिकार में पर्दे के ऊपर भी किसी ने सवाल किया था, तो दरमियान में एक दूसरी बात चल रही थी तो साजिद ने खाली जो है उनको ये कह दिया था कि हमारे कुरान की जिल्द 7 से सूरह अहज़ाब में जो हिजाब के अहकाम हैं वहां से वो पढ़ना शुरू करे। ठीक है, लेकिन जो सवाल था कि जी घर के अंदर जो है वो बहनोई भी होते हैं और देवर भी होते हैं और कजन्स भी आते जाते रहते हैं घर के अंदर, तो फिर उनसे कैसे पर्दा करें। ठीक है, तो उनसे कैसे पर्दा करने के लिए बस चंद टिप्स होती हैं, यानी पर्दा तो करना है, फर्ज है औरत के ऊपर, लेकिन उसको यानी हाउ टू एग्जीक्यूट इट, हाउ टू उसको यानी चलाना कैसे, तो उसके लिए टिप्स होती हैं। ठीक है ना, तो वो टिप्स की हद तक जो है वो सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। तो अगरचे के खवातीन जो कर रही होती हैं इस किस्म के माहौल के अंदर पर्दा, तो उनसे ज्यादा अच्छा तो कोई टिप आपको दे नहीं सकता है। साजिश को तो अलहमदुल्ला कभी पर्दा नहीं करना पड़ा, अगरचे के हमारे जो तो शेख हैं तो उनके अजीब एक जबरदस्त किस्म का उनका एक जुमला होता है, वो ना जो यानी उनके स्टूडेंट्स होते हैं सालिकीन जिनको कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि अजीब फरमाते हैं, औरतों ने हमसे पर्दा नहीं करना, हमने औरतों से पर्दा करना है। ठीक है ना, यानी जिसको अपने ईमान की फिक्र होती है ना, अपने अमाल की फिक्र होती है, वही नहीं कि भी औरत पर्दा क्यों नहीं करती, वो उसको तो खुद औरत से पर्दा करना होता है। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए होता है ना जिसको अपने ईमान की फिक्र हो, तो वही वो इस बात को समझेगा और वही इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा, अपनी निगाहों को झुकाएगा, बेशक सामने जिस किस्म की भी चीज आई हुई हो उसने अपने आप को बचाना है। लेकिन शरीयत का हुक्म तो पर्दे का औरत के ऊपर ही है, तो पर्दे ने अपने औरत ने अपने आप को छुपाना है, यानी जिस औरत ने पर्दा करना है उसने अपने आप को छुपाना है, उसने दूसरों को नहीं कहना कि तुम इधर से निकल जाओ, तुम उधर से निकल जाओ। ठीक है, तो इस वजह से अब औरत को बहुत सारे टिप्स की जरूरत पड़ती है। तो अब जैसे फैमिली स्पेशली जॉइंट फैमिली होती है ना, तो उसमें अब क्या करें बहुत मुश्किल होती है, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मुश्किल होती है। तो भाई सबसे पहले तो करने का वही काम होता है कि अल्लाह ताला से दुआ मांग। ठीक है ना, कोई काम दुआ के बगैर शुरू नहीं होता। ठीक है ना, जो दुआ के बगैर शुरू हो गया तो बस समझ लें कि वो आफत ही आफत है। तो भाई पहले दुआ करें ना, पहले अल्लाह मैं पर्दा करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही, आप मेरे लिए इसको आसान फरमा दें। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है काम शुरू करें और देखें फिर अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद दुआ करने के बाद जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं ना, वो आपको बॉडी लैंग्वेज के जरिए से यानी अपने हरकात और जो सकनात कहते हैं, हरकात और सकनात, अपने लिबास, उसके जरिए से ना फिर आप ये सिग्नल्स देना शुरू करें घर वालों को, सिग्नल्स देना शुरू करें कि यू आर चेंजिंग, आप चेंज हो रही हैं, आप तब्दील हो रही हैं, है ना, जिसको मजाक में तंज में लोग कहते हैं मौलविया बन रही हैं। तो भाई अल्लाह को राजी करना है तो मौलविया बने बगैर नहीं राजी कर सकते, मौलविया बनना पड़ेगा, यानी लोगों के ताने जो है ना वो उनको इग्नोर करना पड़ेगा, अल्लाह की खातिर, आखिरत की खातिर, जन्नत की खातिर, है ना। तो भाई ये तो यानी इसको अच्छा समझें, लोग आपको मौलविया कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा लाख एहसान है मेरे ऊपर कि लोग मुझे मौलविया कहना शुरू हो गए, अपनी सोच को बड़ा तब्दील कर लें। ये कोई स्टिग्मा अटैच्ड क्यों है आपके लिए मौलविया कहना, भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलविया बन गया। ठीक है ना, तो इन चीजों की जरा परवाह छोड़नी होगी और लोगों को सिग्नल्स देने शुरू करें कि जी आप चेंज हो रही हैं। ठीक है ना, फिर आप उन लोगों से ताल्लुक जोड़ना शुरू करें जो पहले से मौलवी बने हुए, या जो औरतें पहले से मौलवियां बनी हुई उनसे ताल्लुक जोड़ना शुरू करें, उनके आना जाना शुरू करें, उनसे बातचीत शुरू करें। ये बहुत अहम है, इस ताल्लुक जोड़े बगैर आप खड़ी नहीं रह सकेंगी, आपके अंदर इस्तेकामत नहीं आएगी। ठीक है ना, कर भी लिया ना एक दिन, अगले दिन जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये सपोर्ट सिस्टम आप ज्वाइन नहीं करेंगी आपके फेर में इस्तेकामत नहीं आएगी। ठीक है, तो दुआ, फिर उसके बाद सिग्नल्स देना शुरू करना लोगों को, और साथ साथ जो है ना वो पीछे से सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट होना, यानी जो लोग पहले से दीन पे अमल कर रहे हैं अपने घरानों के अंदर उनके साथ जोड़ना। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होता है ना वो, फिर वो तो एक लंबा प्रोसेस है, फिर बाद में कभी बात करेंगे इसके ऊपर कि आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर कटना होता है, बातचीत छोड़नी होती है, टेबल पर बैठना एक साथ वो छोड़ना होता है, कमरे में एक साथ बैठना छोड़ना होता है, खुशगप्पियां ये सारी चीजें छोड़नी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इवेंचुअली हो जाता है फिर ये सब कुछ। हजारों ने किया, लाखों ने किया, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? जो जो अभी नहीं कर रही है वो क्यों नहीं कर सकते? ये इस प्रोसेस से कितनी खवातीन गुजरी हैं, हमारे अपने घर वाले इस प्रोसेस से गुजरे हैं, हमारे अपने कितने जानने वाले कजन्स, और हमारे घरों में कोई पर्दा नहीं होता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये लफ्ज ही नहीं पता था ये चीज क्या होती है। हालांकि 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, हालांकि बड़े शरीफ लोगों में शुमार होते थे, कोई जिना शराब किस्म की कोई चीज नहीं थी, लेकिन पर्दा क्या होता है किसी तस्म का को कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हो सकता है बड़ों के पास होता हो, हम तो नौजवान थे, हमें तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये चीज क्या होती है, पता ही नहीं था ये सतर क्या चीज होती है। तो भाई ऐसे घरानों के लोग जो है जब पर्दा कर सकते हैं, मर्द भी औरतों से पर्दा कर सकते हैं और औरतें जो है वो अपने आप को पर्दे में छुपा सकती हैं, तो फिर किसी के पास क्या एक्सक्यूज है ना? तो करने के बस दिल में नियत होनी चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला असल कादर मुतलक अल्लाह ताला है, वो आसान फरमा देते हैं। अच्छा आपने क्या पूछा है कि वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया और कुछ छोड़ दिया उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उस शख्स को क्या कहेंगे? आप दोनों कहेंगे, क्योंकि अकदा जो है वो कुदियतन जो है वो उसका फेल है, लेकिन वो लफ्ज तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, तो अगर ग्रामर के वजन पे उसको शायद आके दोनों कहेंगे, पता नहीं, मैं उसका जवाब नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह आई डू पर्दा, बट आई वॉज आस्क दैट कम्युनिकेशन किस हद तक करनी चाहिए जरूरतन, ठीक है ना? जरूरत को डिफाइन करना होगा कि जरूरत होती क्या है, और जरूरतन कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बिना जरूरत कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए, वरना पर्दा जो है ना फिर बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है उसके बाद, बिना जरूरत कम्युनिकेशन जब शुरू करते हैं, लेकिन जरूरत को डिफाइन करना पड़ता है ना कि है क्या जरूरत। तो अब वो जरूरत की डेफिनेशन वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से जरा एक्टिवली अपने टीचर्स के साथ मशवरे में रहते हैं तो फिर जरूरत समझ में आ जाती है कि मेरे लिए क्या जरूरी है और मेरे लिए क्या जरूरी नहीं है। और अगर टीचर्स से कम्युनिकेशन के बगैर जरूरत डिफाइन करेंगी तो फिर शैतान आकर के ना उसमें कुछ गड़बड़ करेगा, जो जरूरत है उसको आपको ये कहेगा कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जो जो जरूरत नहीं है उसको आकर के कहेगा आपको कि नहीं इसकी जरूरत है। तो चूंकि फिर सब सब कुछ मैसअप हो जाएगा ना, फिर आप पर्दा कर भी रहे होंगे ना, फिर भी वो अल्लाह की रजा वाला पर्दा नहीं होगा, फिर वो शैतान वाला पर्दा शुरू हो जाएगा। शैतान भी पर्दा करवाता है, आपका क्या ख्याल है? शैतान पर्दा नहीं करवा सकता, शैतान भी पर्दा करवा सकता है औरत से, लेकिन नीयत और इल्म गलत होगा तो फिर वो शैतानी पर्दा बन जाएगा, ठीक है ना? इस वजह से टीचर से पूछना होता है, पहले सेट करना होता है कि जी जरूरत क्या है, वो पूछ पूछ के करेंगी तो शैतान के मजबूत रहेंगे, यानी कुछ करने लगा कुछ 60 ईयर्स ओल्ड के बाद पर्दे के अहकाम चेंज हो जाते हैं, चेंज तो नहीं हो जाते लेकिन कुछ रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जो खवातीन है उनसे पूछ लें इस बार, कुछ हो जाते हैं रिलैक्स, जैसे कि चेहरे के बारे में भी सुना है कि चेहरे का पर्दा तो उस वक्त नहीं रहता, लेकिन बहरहाल जो करने वाले होते हैं ना तो वो तो मरते दम तक डेथ बेड के ऊपर भी अलहमदुल्ला, चाहे वो 80 साल की होकर के वो इंतकाल हो ना, वो फिर भी नहीं, वो फिर भी अलग ही रहते हैं, क्योंकि औरतों का निज़ाम अलग, मर्दों का निज़ाम अलग, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके यहाँ होता है कि जहाँ जी आपके साथ साथ हो गई हैं, आप जो है रिलैक्सेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? I was started 4 years before. Earlier, I was talking with them, and now I avoid Fazul Park, but they said it is not necessary. Means ये तो पता ताल्लुक ही है, झूठ बोल रहे हैं, पक्का झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये शैतान है, ये शैतान उनसे बुलवा रहा है कि जी गैर महरम के साथ जो फजूल टॉक जो है ना, अगर कोई छोड़ दे औरत, ये पता ताल्लुक ही है, ये पक्का झूठ बोल रहा है ये बंदा, ठीक है ना? बिल्कुल उसकी बात ना माने, चाहे वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये, जो भी है ये, ठीक है? पता ताल्लुक ही ये नहीं होता है, फजूल टॉक को खत्म कर दिया तो पता ताल्लुक ही हो गए। ये ऐसी जो है ना, ये मॉडर्न किस्म के जो लोग होते हैं, जो मॉडर्न मुस्लिम मुसलमान भी होते हैं, जो एक्चुअली इबादतें तो खूब कर रहे होते हैं लेकिन शैतान की मार करके चल रहे होते हैं, उलमा व शायख का उनके जिंदगी में कोई रोल नहीं होता है ना, वो इस किस्म की फजूल बातें करते हैं और लोगों को गलत अल्फाज, यानी अल्फाज दीन के इस्तेमाल करेंगे, ये कता ताल्लुक ही हराम है, लेकिन असल में जो है ना वो शैतान के मकसद को पूरा कर रहे हैं, दीनी अल्फाज इस्तेमाल करके, दीनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके, दरअसल गोल किसका अचीव कर रहे हैं? शैतान का गोल अचीव कर रहे हैं। ये बहुत आम है, ये वाला गुना बहुत आम है। इसको कहते हैं कलिमतुल हक युरीदु बिहिल बातिल। हक कलिमा इस्तेमाल करो, हक लफ्ज इस्तेमाल करो और बातिल मकसद को अचीव करो। ये हो रहा होगा असल में। ऐसे लोगों की बात हर भी नहीं माननी चाहिए, लेकिन बात वही है ना कि आप उलमा मशाइख के साथ जुड़ के रहें ना, तब इस किस्म की जो जो कंफ्यूज करने वाले लोग होते हैं उनके कंफ्यूजन से आप महफूज रहेंगी। और अगर आप अपने तौर पर किताबें पढ़ करके या कोई लेक्चर सुन करके आप शुरू कर देंगी तो फिर ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कंफ्यूज करने वाले। ठीक है, तो इस वजह से सपोर्ट सिस्टम के बगैर नहीं पैदा कर सकता बंदा सारे काम। ठीक है, और कोई सवाल अगर पूछना। कुरान पाक की तो आयत अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह, इसमें तस्बीहात आते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसमें तस्बीहात आती हैं। देखें तत्मइन्नुल क़ुलूब जो है ये बात वही है कि तस्बीहात आती हैं शर्त के साथ। शर्त क्या है जी, आप बताएं ना जी, क्लास वाले बताएं। इन्होंने सवाल पूछा है कि कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के जान लो कि अल्लाह के जिक्र के साथ दिलों का इत्मीनान वाबस्ता है। ठीक है, अब क्या तस्बीहात करने से दिलों का इत्मीनान मिल जाता है? तो ये आदेश जवाब दे रहा है कि तस्बीहात शामिल हैं इसके अंदर, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है ये आप बताएं। शर्त क्या है जी, दिल का इत्मीनान कब मिलेगा तस्बीहात पढ़ने से? ये नहीं कह रहा हूं कि तस्बीहात पढ़ने से दिल का इत्मीनान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त के साथ। वो शर्त क्या है? फर्ज, बिल्कुल सही फरमाया, फर्ज अदा हो रहा हो, फर्ज अदा हो रहा हो तो फिर तस्बीहात भी उसके जिक्र में यानी एडिशन कर रही है, यानी उसके जिक्र यानी जुबानी जिक्र। भाई जुबान से भी तो जिक्र होता है। ठीक है, तो बेशक तस्बीहात शामिल है उसके अंदर लेकिन उस शर्त के साथ। और अगर कोई तो बंदा है जो कि तस्बीहात पढ़ रहा है लेकिन फर्ज नहीं कर रहा, छोड़ रहा है, कम अहमियत दे रहा है, उसको कभी भी मुतमईन कुलूब हासिल नहीं हो सकता। हाँ, धोखा बेशक उसको होता है कि मैं तो जी बड़ी मुतमईन हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना जी मेरे तो कोई मसले कोई नहीं है, मैं तो बड़ी खुश हूँ जी। झूठ होता है, ये पक्का झूठ होता है, ये शैतान ने उसको धोखा दिया हुआ है असल। ठीक है ना, जो उसके दिल में इत्मीनान है ना, ये शैतान का धोखा है, ये सच्चा इत्मीनान नहीं है। हर के सर के दिल में सच्चा इत्मीनान। झूठ बोलना बहुत आम है, ये मत समझा करें कोई शख्स कोई बात कह रहा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, नहीं। झूठ इज अ रियालिटी अनफॉर्चुनेटली। और कोई बात हो गया तो इंशाल्लाह बात करें। अगर कोई सवाल हो भी तो विकास में रखिएगा। तो आपको बनवाना है।